एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं जोनाथन आइग की 2023 में आई किताब किंग अ लाइफ के बारे में। ये किताब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन पर एक कह सकते हैं नई और काफी गहरी नजर डालती है। किंग का नाम तो हम सबने सुना है, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे बड़े नेता, अहिंसा के प्रतीक, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी। 1955 से लेकर 1968 में उनकी दुखद हत्या तक वो अमेरिका में बदलाव की एक बहुत बड़ी आवाज थे। पर ये किताब, ये क्यों इतनी खास है, इसमें नया क्या है?
हाँ, देखिए, ये किताब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किंग को सिर्फ एक एक मूर्ति या संत की तरह नहीं देखती।
आइग ने जो हाल ही में FBI फाइल्स पब्लिक हुई हैं।
अच्छा, हाँ, और किंग के जो निजी पत्र हैं, दूसरे दस्तावेज जो पहले सामने नहीं आए थे, उनका इस्तेमाल किया है, तो इनसे किंग का एक ज्यादा जटिल, एक ज्यादा मानवीय चेहरा सामने आता है।
मतलब सिर्फ उनकी जो पब्लिक लाइफ थी, जो जीते थी, भाषण थे, वो नहीं,
हाँ,
बल्कि पर्दे के पीछे का इंसान, उनके अपने शक, उनका डिप्रेशन, जो उम्मीदों का बोझ था, वो सब भी।
बिल्कुल बिल्कुल वही। ये किताब यही दिखाती है कि कैसे एक महान, एक प्रतिष्ठित शख्सियत के पीछे भी कितने गहरे निजी संघर्ष चल रहे होते हैं। आइग ने कोशिश की है कि वो जो एक परत चढ़ जाती है ना समय के साथ किसी भी बड़ी हस्ती पर, उस परत को हटाकर असल इंसान को देखा जाए। वो इंसान जो प्रतिभाशाली था, हाँ, लेकिन जिसमें कमियां भी थी, और जो इन सब के बावजूद असाधारण रूप से वीर था। ये कहानी है कि कैसे अटलांटा का एक मध्यवर्गीय लड़का एक पूरे देश की नैतिक अंतरात्मा बन गया, और इसकी उसे क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी।
तो चलिए इस सफर को शुरू से देखते हैं। किंग के शुरुआती साल कैसे थे, उनका बचपन, परिवार, वो माहौल जिसने उन्हें बनाया।
किंग का जन्म 1929 में अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था। उनका असली नाम माइकल किंग जूनियर था, बाद में बदला गया। उनका परिवार उस वक्त के अश्वेत समुदाय के हिसाब से देखें तो हाँ, काफी अच्छी स्थिति में था। उनके पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर, जिन्हें लोग डैडी किंग भी कहते थे, अटलांटा के बहुत जाने माने बैप्टिस्ट पादरी थे, और माँ अल्बर्टा विलियम्स किंग, वो भी शहर के एक सम्मानित अश्वेत परिवार से थी।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा सुरक्षित था, या फिर नस्ली भेदभाव का असर था?
हाँ, कुछ हद तक सुरक्षित जरूर था, मतलब आर्थिक रूप से। घर में बौद्धिक बहसें, चर्चाएं खूब होती थी, लेकिन आइग लिखते हैं कि भावनाओं को खुलकर जाहिर करने का रिवाज जरा कम था, और पिता का व्यक्तित्व थोड़ा सख्त था, जिसका किंग के मन पर, उनके विकास पर गहरा असर पड़ा। और हाँ, जहां तक भेदभाव की बात है, भले ही वो सीधे तौर पर जिम क्रो यानी नस्ली अलगाव की जो सबसे बुरी मार थी, उससे शायद कुछ बचे हुए थे, लेकिन उन्हें इन बनावटी दीवारों का एहसास बहुत जल्दी और बहुत तीखा हो गया था।
कोई खास घटना?
हाँ, बचपन की एक घटना का जिक्र आता है, जब उनका एक सफेद दोस्त था, बचपन का दोस्त, उसने अचानक से इनके साथ खेलना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये अश्वेत थे। ये उनके लिए अलगाववाद की क्रूरता का शायद पहला बड़ा सबक था।
और पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? सुना है काफी तेज थे दिमाग से।
हाँ, बहुत। कम उम्र में ही क्लासेज जंप की, भाषा पर पकड़ जबरदस्त थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी आस्था, अपनी पहचान, अपने जीवन का क्या मकसद है, इन जैसे गहरे सवालों से भी जूझ रहे थे। एक और बात जिसका जिक्र आइक करते हैं, वो है उनकी दादी की मृत्यु। आइक के अनुसार शायद वो आत्महत्या थी, और इसका उन पर बहुत गहरा असर हुआ। वो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा दोषी भी मानते थे, और सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मोर हाउस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था।
15 साल में कॉलेज? जाहिर है यहीं से उनके विचारों का, उनकी सोच का विकास तेजी से हुआ होगा।
बिल्कुल, मोर हाउस कॉलेज उनके लिए एक तरह का बौद्धिक जागरण था। वहां कॉलेज के प्रेसिडेंट थे बेंजामिन मेस। किंग उन्हें अपना आध्यात्मिक पिता मानते थे। यही उनका परिचय सोशल गॉस्पल परंपरा से हुआ, मतलब ये सोच के भाई, धर्म का काम सिर्फ परलोक सुधारना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया में धरती पर न्याय के लिए लड़ना भी है। और यही वो गांधी के विचारों के संपर्क में आए।
गांधी का प्रभाव, ये तो उनके जीवन का एक मुख्य सूत्र रहा।
हाँ, बहुत गहरा। इसके बाद वो पेंसिल्वेनिया गए, क्रोजर थियोलॉजिकल सेमिनरी। वहां भी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे, लिबरल थियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। आयरिंग ये भी बताते हैं कि इसी दौरान साम्यवादी विचारों से भी उनका थोड़ा बहुत परिचय हुआ, जो बाद में FBI की जो जांच हुई ना, उसका एक बड़ा कारण बना। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उनका ये इरादा बिल्कुल पक्का हो गया कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक्टिवली लड़ना है। गांधी के सत्याग्रह को उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा, समझा।
फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की, और यहीं कोरेटा स्कॉट से मुलाकात हुई, फिर शादी। आइग उनकी अकादमिक जिंदगी के बारे में कुछ और बताते हैं। एक पैच राइटिंग का भी जिक्र आता है, वो क्या था?
हाँ, आई गेस विवाद पर भी बात करते हैं। देखिए, डॉक्टरेट के दौरान उनके कुछ लिखने पढ़ने के काम पर यह आरोप लगा कि उन्होंने दूसरों के काम को थोड़ा बहुत बदलकर बिना पूरा क्रेडिट दिए इस्तेमाल किया था। इसे पैच राइटिंग कहते हैं। आइक का मानना है कि ये शायद उस समय के अश्वेत चर्च की जो एक मौखिक परंपरा होती है जहां विचारों को साझा किया जाता है।
अच्छा।
हाँ, और साथ ही उन पर जो जबरदस्त अकादमिक दबाव था शायद उसका नतीजा हो सकता है। ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन उस संदर्भ को समझने में थोड़ी मदद मिलती है।
और फिर वो अनिच्छा से, मतलब बिना ज्यादा मन के, मॉन्टगोमरी में पादरी बने। ये थोड़ा अजीब लगता है, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अनिच्छा क्यों?
हाँ, शायद इसलिए कि वो अकादमिक दुनिया में ही रहना चाहते थे, या फिर उन्हें लीडरशिप की जो सीधी जिम्मेदारी होती है उसको लेने में थोड़ी हिचक थी। लेकिन हाँ, 1954 में वो मॉन्टगोमरी के डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च के पादरी बन गए। और फिर तो इतिहास ने करवट ली। दिसंबर 1955 में रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी हुई।
हाँ, वो मशहूर घटना।
और उसके बाद जो मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट शुरू हुआ, उसका नेतृत्व करने के लिए किंग को चुना गया। तब वो सिर्फ 26 साल के थे। ये उनके जीवन का एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था।
यहीं से वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे। आई गेस इस बॉयकॉट के अनुभव के बारे में क्या खास बताते हैं, क्योंकि ये तो उनके नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा थी।
बिल्कुल, आइक दिखाते हैं कि ये बॉयकॉट किंग के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। शुरुआत में वो नेतृत्व को लेकर, जैसा मैंने कहा, थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास आया। उनके घर पर बम फेंका गया।
बाप रे।
लेकिन वो अहिंसा पर डटे रहे। 381 दिन ये बॉयकॉट चला और सफल रहा। इसने किंग को एक नेशनल फिगर बना दिया। आइए इसी दौरान एक बहुत ही निजी, बहुत गहरे अनुभव का जिक्र करते हैं, जिसे किंग ने बाद में किचन टेबल एपिफनी कहा।
किचन टेबल एपिफनी, ये क्या था, थोड़ा बताएंगे?
हाँ, हुआ ये कि एक रात जब वो धमकियों से, डर से बहुत ज्यादा परेशान थे, टूट रहे थे अंदर से, तो उन्हें अपनी रसोई की मेज पर बैठे हुए अचानक ईश्वर की उपस्थिति का, एक डिवाइन प्रेजेंस का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे ईश्वर उनसे कह रहे हों कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अंत तक डटे रहना है। आइक के मुताबिक इस अनुभव ने किंग के इरादे को फौलादी बना दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक सामाजिक लड़ाई नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक मिशन है।
वाह, ये तो सच में बहुत गहरा अनुभव रहा होगा। इसने जरूर उन्हें आगे के संघर्षों के लिए बहुत ताकत दी होगी। इसके बाद क्या हुआ, SCLC वगैरह?
हाँ बिल्कुल, इसके बाद 1957 में उन्होंने और साथियों ने मिलकर सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस SCLC बनाई। फिर अल्बेनी मूवमेंट हुआ 1961-62 में। वो रणनीतिक तौर पर बहुत सफल नहीं रहा, पर किंग ने उससे काफी कुछ सीखा। और फिर आया बर्मिंघम अभियान 1963 में।
बर्मिंघम, वो तो बहुत अहम था।
बहुत ज्यादा। यहाँ उन्होंने अल्बेनी की गलतियों से सीखते हुए रणनीति बनाई, और वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे, बुल कॉनर, उनकी क्रूरता पूरी दुनिया के सामने आ गई। बच्चों पर कुत्तों से हमले, पानी की तेज धार, उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव बना, और इसी दौरान जेल से उन्होंने अपना वो मशहूर खत लिखा, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल।
हाँ, वो खत तो क्लासिक माना जाता है। और बर्मिंघम के बाद तो उनका कद और भी बढ़ गया, फिर वॉशिंगटन मार्च और वो ऐतिहासिक आई हैव अ ड्रीम भाषण।
हाँ, 1963 का वॉशिंगटन मार्च एक माइलस्टोन था। 2.5 लाख से ज्यादा लोग लिंकन मेमोरियल पर, और वहां दिया गया आई हैव अ ड्रीम भाषण। वो उनकी उम्मीदों का, सबको साथ लेकर चलने वाली उनकी सोच का प्रतीक बन गया। लेकिन आइक एक जरूरी बात और कहते हैं, वो ये कि इस भाषण की जबरदस्त लोकप्रियता ने कहीं ना कहीं उनके जो बाद के ज्यादा रेडिकल, ज्यादा क्रांतिकारी विचार थे, उनको थोड़ा ढक सा दिया। लोगों ने अक्सर सिर्फ इसी भाषण से याद करने लगे।
अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद तो बड़ी सफलताएं मिली। सिविल राइट्स एक्ट 1964 में पास हुआ, फिर वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 में। ये तो बहुत बड़ी जीतें थीं। क्या किंग यहीं रुक गए या उनका फोकस बदला?
नहीं, वो रुके नहीं, बल्कि यहीं से किंग के विचारों का एक नया और ज्यादा गहरा दौर शुरू होता है। उनका ध्यान अब सिर्फ कानूनी नागरिक अधिकारों से हटकर व्यापक मानवाधिकारों पर जाने लगा, खासकर आर्थिक असमानता और सिस्टम में जो नस्लवाद घुसा हुआ था उस पर। 1966 में शिकागो फ्रीडम मूवमेंट हुआ। वहां उन्हें उत्तरी अमेरिका के नस्लवाद की जटिलताओं का अंदाजा हुआ, जो दक्षिण से थोड़ा अलग था। वहां उन्हें काफी हताशा भी मिली।
और फिर उन्होंने वियतनाम युद्ध का खुलकर विरोध किया। ये एक बहुत बड़ा और शायद बहुत विवादास्पद कदम था उस वक्त, है ना?
हाँ, बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत वाला भी। 4 अप्रैल 1967 को न्यूयॉर्क के रिवरसाइड चर्च में उन्होंने एक भाषण दिया बियॉन्ड वियतनाम। वो एक धमाके जैसा था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अमेरिका का वियतनाम युद्ध, देश में गरीबी और नस्लवाद, ये तीनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। आप एक से लड़कर बाकी दो को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें समर्थन मिला या विरोध?
युद्ध ज्यादा हुआ। इस भाषण के बाद उन्हें अपने कई पुराने उदारवादी सहयोगियों से, सरकार से, खासकर राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से, और यहां तक कि मीडिया के एक बड़े हिस्से से भी तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। वो काफी अकेले पड़ गए थे इस मुद्दे पर।
और FBI तो शायद पहले से ही उनके पीछे पड़ी हुई थी।
हाँ, वो तो था ही। जे एडगर हूवर के नेतृत्व में FBI का जो क्विंटेल प्रो प्रोग्राम था, वो लगातार उनकी निगरानी कर रहा था, उनकी जासूसी कर रहा था, उन्हें बदनाम करने और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। आईगुन टेप्स का और एक गुमनाम खत का भी जिक्र करते हैं जो FBI ने किंग को भेजा था, जिसमें उन्हें एक तरह से आत्महत्या के लिए उकसाया गया था।
ये तो बहुत ही भयानक है।
हाँ, ये सब उनके आखिरी सालों के गहरे डिप्रेशन, उनकी थकान और जो निजी संघर्ष थे, उनको और ज्यादा बढ़ा रहा था।
इतना सब कुछ झेलना अविश्वसनीय लगता है। उनकी आखिरी बड़ी योजना क्या थी जिस पर वो काम कर रहे थे?
उनकी सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी पुअर पीपल्स कैंपेन, यानी गरीब लोगों का अभियान। वो चाहते थे कि अलग अलग नस्ल के जो गरीब लोग हैं अमेरिका में, वो सब एकजुट हों और वॉशिंगटन जाकर आर्थिक न्याय की मांग करें। एक बड़ा धरना, एक बड़ा प्रदर्शन। इसी सिलसिले में वो मेम्फिस, टेनेसी गए थे। वहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। वो उनका समर्थन करने गए थे।
और वहीं
4 अप्रैल 1968 को लोरेन मोटेल की बालकनी पर खड़े हुए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सिर्फ 39 साल के थे।
और आईग उनकी मौत से ठीक पहली रात का एक बड़ा मार्मिक किस्सा बताते हैं। दोस्तों के साथ हंसी मजाक में वो तकियों से लड़ रहे थे, पिलो फाइट खेल रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। और उनका आखिरी भाषण आई हैव बिन टू द माउंटेन टॉप, जिसमें उन्होंने जैसे भविष्य देख लिया था, कहा था कि मैंने वो वादा किया हुआ देश देख लिया है, शायद मैं आपके साथ वहां ना पहुंच पाऊं, पर हम एक लोग के तौर पर वहां जरूर पहुंचेंगे। उनकी जिंदगी का सफर सच में असाधारण था। इतने उतार चढ़ाव, इतने संघर्ष। अगर हम उनके मूल विचारों को, उनके दर्शन को समझने की कोशिश करें तो वो क्या था, कौन सी सोच थी जो उन्हें चलाती थी?
देखिए, किंग का जो दर्शन था वो तीन मुख्य धाराओं का एक बहुत अनूठा संगम था, कह सकते हैं। पहला तो था अश्वेत सामाजिक सुसमाचार, ब्लैक सोशल गॉस्पल। ये वो विश्वास था कि धर्म का काम सिर्फ मरने के बाद आत्मा को बचाना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया में जीते जी अन्याय से लड़ना और न्याय स्थापित करना है। दूसरा जाहिर है गांधीवादी अहिंसा, सत्याग्रह। किंग के लिए यह कोई कमजोरी या निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि एक बहुत सक्रिय, एक आध्यात्मिक ताकत थी, सोल फोर्स जिसे वो कहते थे। मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि उसका दिल जीतना, उसकी अंतरात्मा को जगाना था, ताकि एक प्रिय समुदाय बन सके।
और तीसरा प्रभाव?
तीसरा था राइनहोल्ड नीबूर का क्रिश्चियन रियलिज्म। नीबूर एक धर्मशास्त्री थे जिनका मानना था कि जो ताकतवर समूह होते हैं, जिनके पास विशेष अधिकार होते हैं, वो आसानी से अपनी सत्ता, अपनी ताकत नहीं छोड़ते। और बुराई या पाप कहें, वो सिर्फ व्यक्तियों में नहीं होता, बल्कि समाज के पूरे ढांचे में, सिस्टम में भी समाया होता है। इसलिए सिर्फ नैतिक अपील काफी नहीं है, उसके साथ साथ अहिंसक दबाव भी जरूरी है। किंग ने इन तीनों विचारों को मिलाकर अपनी एक राह बनाई।
और बाद के सालों में ये सोच और विकसित हुई जब उन्होंने उन तीन बुराइयों की बात की, नस्लवाद, गरीबी और सैन्यवाद।
हाँ, अपने आखिरी सालों में उनका विश्लेषण और गहरा और रेडिकल होता गया। उन्होंने इन तीन बड़ी बुराइयों की पहचान की, नस्लवाद, अत्यधिक भौतिकवाद या गरीबी, और सैन्यवाद। और वो ये मानने लगे थे कि ये तीनों एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि आप इन्हें अलग अलग करके नहीं हरा सकते। ये उनके चिंतन का, कह सकते हैं, एक तरह का क्लाइमैक्स था।
इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, इतना सब सहने के लिए प्रेरणा कहाँ से आती थी? क्या सिर्फ ये दार्शनिक विचार ही काफी थे या कुछ और भी था?
प्रेरणाएं भी काफी जटिल थी। एक तरफ तो वो जो किचन टेबल एपिफिनी वाला अनुभव था, उसके बाद उन्हें यह पक्का यकीन हो गया था कि ये ईश्वर का काम है और वो बस एक जरिया है, एक माध्यम है। दूसरी तरफ एगर बताते हैं कि उनमें एक गहरा अपराध बोध भी काम करता था। अपनी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि को लेकर, अपने भाई के डूबने से बचने की एक घटना को लेकर, और हाँ, अपनी निजी नैतिक कमजोरियों को लेकर भी, खासकर उनके जो विवाहेतर संबंध थे। ये अपराध बोध शायद उन्हें और ज्यादा त्याग करने और ज्यादा खुद को झोंक देने के लिए प्रेरित करता था।
और पिता और लाखों लोगों की जो उम्मीदें थी, उनसे उसका भी दबाव रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, डैडी किंग और उनके लाखों फॉलोअर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव तो जबरदस्त था ही, लेकिन इन सब के पीछे आइक के अनुसार जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी वो थी अगापे, यानी सबके लिए एक निस्वार्थ, एक बिना शर्त वाला प्यार, यहां तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी। यही उनके दर्शन और उनके एक्शन का मूल आधार था।
अगर हम किंग के जीवन के कुछ सबसे अहम मोड़ों को देखें, टर्निंग पॉइंट्स को, तो आइक की किताब के हिसाब से कौन से तीन पल आपको लगते हैं कि सबसे ज्यादा निर्णायक थे, जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी?
हाँ, वैसे तो कई मोड़ आए, लेकिन आइक की किताब को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि तीन शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी थे। पहला, निश्चित रूप से मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट 1955-56।
हाँ, वो तो शुरुआत थी।
बिल्कुल, इसने एक युवा पादरी को, जो थोड़ा झिझक भी रहा था, अचानक से एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। उनके घर पर बमबारी हुई, वो अहिंसा के प्रति उनकी जो कमिटमेंट थी उसकी पहली और बहुत कड़ी परीक्षा थी, और यहीं वो किचन टेबल एफएफएनी हुई जिसने उनके संकल्प को एक आध्यात्मिक गहराई, एक डिवाइन सैंक्शन दिया। इसने उन्हें लीडरशिप की भूमिका में मजबूती से स्थापित कर दिया।
सही कहा, ये वाकई एक शुरुआत थी। दूसरा मोड़ कौन सा मानेंगे?
दूसरा मोड़ मैं मानूंगा बर्मिंघम अभियान, और खासकर वो लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल 1963। ये उनकी रणनीतिक परिपक्वता का शिखर था। उन्होंने सोच समझकर बर्मिंघम को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां का पुलिस कमिश्नर बुल कॉनर हिंसक प्रतिक्रिया देगा, और वही हुआ। और जेल से लिखा गया वो खत, उसने सिर्फ उनके दर्शन को ही दुनिया के सामने साफ साफ नहीं रखा, बल्कि सविनय अवज्ञा का जो नैतिक आधार था उसे इतने जबरदस्त तरीके से पेश किया। उसने इस लड़ाई को सिर्फ अमेरिका के अश्वेतों की लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि इसे पूरी इंसानियत के लिए न्याय की एक सार्वभौमिक लड़ाई बना दिया। इस खत ने उन्हें आंदोलन का एक तरह से मुख्य दार्शनिक विचारक बना दिया।
और तीसरा मोड़, क्या वो वियतनाम वाला भाषण था?
बिल्कुल, मेरे ख्याल से तीसरा सबसे निर्णायक मोड़ था वो बियॉन्ड वियतनाम भाषण 1967, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से वियतनाम युद्ध की निंदा की, तो वो अपने कई पुराने साथियों, उदारवादी सहयोगियों और यहां तक कि राष्ट्रपति जॉनसन से भी अलग थलग पड़ गए। याद रखिए, जॉनसन ने ही सिविल राइट्स एक्ट पास कराने में मदद की थी।
हाँ, ये तो बड़ा जोखिम था।
बहुत बड़ा। ये भाषण उनके सिर्फ एक नागरिक अधिकार नेता से आगे बढ़कर एक क्रांतिकारी मानवाधिकार पैगंबर बनने की प्रक्रिया का एक प्रतीक था। इसने दिखाया कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को राजनीतिक सुविधा और लोकप्रियता से कहीं ऊपर रखते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न चुकानी पड़े। इस कदम ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अकेला जरूर कर दिया, लेकिन इसने उनके नैतिक कद को और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया।
आइक की किताब किंग को एक देवता की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह दिखाती है, उनकी कमजोरियों, उनके डर, उनके संघर्षों के साथ। ये जानना एक पाठक के तौर पर कैसा लगता है? क्या ये उनकी छवि को कम करता है?
मुझे लगता है बिल्कुल कम नहीं करता, बल्कि ये उन्हें और ज्यादा रिलेटेबल और ज्यादा प्रेरणादायक बनाता है। आइक किंग के गहरे डिप्रेशन का जिक्र करते हैं, जिसे वो कभी कभी राक्षस द मॉन्स्टर तक कहते थे। उनके डर, उनका अपराध बोध, उनकी जबरदस्त थकान, उनकी निजी कमजोरियां, जैसे उनके विवाहित और संबंध जिनका FBI ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की, ये सब बातें उन्हें हमारे जैसा एक इंसान बनाती हैं। ये जानना कि इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी शख्सियत भी अंदर से इतने संघर्षों से गुजर रही थी, ये अजीब तरह से हिम्मत देता है।
हाँ, शायद ये हमें सिखाता है कि महानता का मतलब परफेक्ट होना, निर्दोष होना नहीं है। महानता शायद चुनौतियों का सामना करने में है, गिरने के बाद फिर से उठने में है, और अपनी कमजोरियों के बावजूद, अपने डर के बावजूद, सही चीज के लिए खड़े होने में है। किंग की कहानी यही दिखाती है कि असाधारण साहस अक्सर डर और कमजोरी पर विजय पाने से नहीं, बल्कि उनके होते हुए भी कदम उठाने से आता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी कहानी ये भी बताती है कि लीडरशिप का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है, लोगों की उम्मीदों का बोझ कितना थका देने वाला हो सकता है, लेकिन साथ ही ये इंसान के अंदर जो लचीलापन होता है, जो रेजिलियंस होती है, और जो विकास करने की क्षमता होती है, उसे भी दर्शाती है। उनकी ताकत उनकी कमजोरियों की गैर मौजूदगी में नहीं थी, बल्कि उन कमजोरियों से उनके लगातार जूझने में थी। ये जानना कि वो भी डरते थे, वो भी थकते थे, वो भी गलतियां करते थे, उनकी उपलब्धियों को कम नहीं करता, बल्कि उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा मानवीय बना देता है।
तो इस पूरी चर्चा से जो इतनी गहरी और कई परतें खोलने वाली रही, अगर हमें तीन मुख्य बातें, तीन टेकअवेज निकालने हों, तो वो क्या होंगी? पहली शायद कोई भावनात्मक बात। हाँ, पहली बात जो दिल को छूती है वो है स्मारक के पीछे का इंसान। किंग का अपने डर, अपने डिप्रेशन और अपराध बोध से लगातार जूझना और वो किचन टेबल एपिफनी जैसे बेहद निजी कमजोरी के पल, ये सब दिखाते हैं कि असली ताकत अक्सर अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करने और उसके बावजूद आगे बढ़ने से आती है। उनकी इंसानियत ही उनकी असाधारणता की जड़ थी, न कि उसके विपरीत।
दूसरी बात जो शायद थोड़ी बौद्धिक है, सोचने पर मजबूर करती है, किंग के विकसित होते क्रांतिकारी विचार। ये समझना कि नस्लवाद, गरीबी और सैन्यवाद, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई तीन बुराइयां हैं और इन्हें एक साथ ही चुनौती देनी होगी, ये उनके आखिरी सालों का सबसे अहम और शायद सबसे कम समझा गया संदेश था। ये सिर्फ नागरिक अधिकारों की लड़ाई से कहीं आगे अमेरिकी समाज और शायद पूरी दुनिया के बुनियादी ढांचे पर एक बहुत गहरा सवाल था। ये उनकी बौद्धिक यात्रा का वो जरूरी पड़ाव है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
और तीसरी एक ऐसी बात जो शायद हम सबके लिए है, एक यूनिवर्सल इनसाइट। हाँ, और तीसरी एक सार्वभौमिक बात जो हम सबके लिए एक सबक है, अंतरात्मा की आवाज की कीमत और विकास का सबक। किंग का जीवन ये दिखाता है कि महानता अक्सर खुद से बड़े किसी मकसद के लिए पूरी तरह समर्पित होने से आती है, असफलताओं और निराशाओं के बावजूद उम्मीद न छोड़ने से आती है, और अन्याय के सामने आराम या लोकप्रियता के बजाय साहस चुनने से आती है, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो, अकेला करने वाला हो और उसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। ये लगातार सीखते रहने और जो सही है उसके लिए खड़े होने का सबक है। शायद हम सबको कभी कभी रुककर सोचना चाहिए कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कितना सुनते हैं, खासकर तब जब वो हमें मुश्किल अनजाने रास्तों पर ले जाती हो।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।